और बाबा का अनमोल हीरा हमारे बीच में पहुंच गया है। सुदेश दीदी जी, करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो दीदी ने कुछ दिन पहले भी एक क्लास कराई थी, कौन कौन उस क्लास में उपस्थित थे जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ थे कुछ नहीं है। तो मैं दोबारा दीदी का परिचय दे देती हूँ एक बार फिर से कि दीदी बाबा के समय के निकले हुए अनमोल रतन हैं। बाबा और मम्मा के हाथों से पालना ली है उन्होंने और दीदी शुरू से ही ज्ञान सुनाने में, जैसे कि आज दिन तक बहुत मीठी मीठी ज्ञान की गुह्य बातें सुनाती है, तो शुरू से ही उनका उस प्रकार का अभ्यास रहा। तो बाबा जब उनको सुनते थे ना कभी, तो बाबा ने उनको जब नहीं, हम कोर्स करा रहे पता नहीं ना बाबा आ रहा है पीछे से, तो बाबा ने जब उनको सुन लिया कि कितनी बच्ची बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुना रही, तो बाबा ने जैसे उनको वरदान दे दिया उसी दिन कि बच्ची ज्ञान की बुलबुल है। हाँ, तो दीदी के लिए वो क्या हो गया, एक वरदान हो गया जो आज दिन तक हम देख रहे हैं कि दीदी मुरली भी जब पढ़ती है तो कितना रस भर देती है उसमें, है ना। क्लास में भी बिल्कुल अंदर से, दिल से, हृदय से दीदी बाबा के ज्ञान रत्नों को सबके सामने रखती है और उन रत्नों पर जो अपना मंथन किया है तो उन ज्ञान रत्नों को और सहज करके हमें देती है ताकि हम भी बहुत सहज रीति से उसको अपने जीवन में उतार सके। तो दीदी ने शुरुआत में तो दिल्ली में सेवाएं की है, रजौरी गार्डन में, लेकिन देश विदेश में बाबा को पहुंचना था तो बाबा ने आपको निमित्त बनाया विदेश जाने के लिए। दादी के साथ आप गए थे और शुरू में तो लंदन में ही रहे, लेकिन जैसे कहते हैं कि बाबा बहती नदियां हो, बहते रहना है सब जगह, तो दादी ने फिर इनको कुछ साल पूर्व, मैं समझती हूँ 10-15 साल पहले ही ना दीदी, दीदी आप यूरोप में 15 साल में गए हैं, इधर जर्मनी में 15 साल से,
नियरली
तो करीब करीब 15 साल से अभी दीदी जर्मनी में रह रही है और वहां पर भी दीदी ने ऐसा सेवाओं का विस्तार किया कि अभी शायद जुलाई मास में ही रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया है कि जहां दादी भी गए थे और भी सीनियर्स गए थे, तो बहुत सेवाओं का दीदी ने विस्तार किया है और अपने ज्ञान रत्नों से सबको सजाने के लिए आज हमारे बीच में आई है। तो अभी हम दीदी से सुनते हैं, आदरणीय सुदेश दीदी जी। दीदी जी कौन से टॉपिक पर बोल रहे हैं आज, आज टॉपिक, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने
आज की मुरली पर ही सुनाएंगे,
आज की मुरली पर ही सुनाए दीदी,
टॉपिक तो बनाया नहीं था ना कुछ नहीं। ओके, ओम शांति। आज बाबा ने, भोलानाथ भगवान ने अपना परिचय फर्स्ट पर्सन में दिया, अपने आप दिया। हमेशा कहते हैं ना, बाप दादा की बायोग्राफी सुनाओ, सबको बाबा का परिचय दो। तो परिचय किसको कहा जाता है, पहचान किसको कहे, किस चीज का नाम पहचान है, किस चीज का नाम परिचय है, उस परिचय में अथवा पहचान में कितनी बातें आज बाबा ने बताई आपके ध्यान पर आई होंगी मुरली सुनते समय, कितनी बातें बताई। तो बाबा के परिचय में 8 बातें हैं आज की मुरली में, भोलानाथ भगवान की महिमा। मुझे बिल्कुल याद है, साकार बाबा के होते भोग का गीत बना था एक, उस समय हमारे पास पहला गीत वो ही बना है। हमारे पास कोई अपने बाबा के बच्चों का बनाया हुआ संगीत गीत नहीं था। जो फिल्म के सॉन्ग्स हैं वो रिकॉर्ड रूप में बजते थे रोज मुरली में, वो तो आप सुनते हो ना, अभी भी हर मुरली में है। तो आज की मुरली में था भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा योग सिखाने वाला कोई और नहीं, ऐसी ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। ये आज का गीत था, पर भोग का जो गीत बना था, जो अपना बना, ये तो फिल्म वालों ने बनाया था गीत, भक्ति वालों ने बनाया। जो अपने बाबा के बच्चों ने बनाया था वो था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने कैसे देखा उसको? हमने देखा, वो कहता है मेरा कोई शरीर वाला रूप ही नहीं है। और आज की मुरली ने भी कहा मेरा कोई जिसम वाला रूप तो है नहीं। रूप की बात बताई ना, तेरा मेरा रूप एक जैसा है, तू अपने आप को देख तो मेरे को भी देख लेगा। तू अपने आप को अगर नहीं देखता तो मेरे को कैसे देखेगा? तो हमने देखा, जिसको शरीर नहीं है, आंख मुंह नाक कान हाथ पैर नहीं है, तो कहेंगे तुम गप लगा रहे हो, तुमने देखा भगवान को, वो तो निराकार है। तो जिस जो निराकार है उसका तो कोई नाम नहीं है, उसका तो कोई रूप नहीं है, तो जिसका नाम नहीं है रूप नहीं है तो आपने देखा कैसे? पूछेंगे। हम कहते नहीं, हमने देखा हमने पाया, अनुभव पाया हमने। क्या पाया? अनुभव पाया। कितना मीठा कितना प्यारा। तो क्या पाया? अनुभव में प्यार पाया, अनुभव में ज्ञान पाया। तो अनुभव जो है वो देखने की, कहते हैं ना, कुछ कहते हैं भाई मैंने ये मिठाई बनाई है, भाई जरा देखना ठीक बनी है, तो कैसे देखते हो? वो तो बनी हुई दिखाई पड़ रही है ना, कैसी बनी है भाई जरा देखना मिठाई कैसी बनी है। ए, मैंने ये चीज बनाई है, चावल बनाए हैं, भाई देखना ठीक बने हैं, भाई दिखाई पड़ रहे हैं तो देखना कैसे ठीक कैसे बने, क्या मतलब है इसका? कैसे देखा आपने? चख के देखा ना, कैसा था भाई मिठाई? कैसी थी? अच्छी थी, मीठी थी। कैसी थी मीठी? कितनी मीठी थी जरा दिखाओ। सचमुच मीठी थी? पता नहीं खट्टी होगी। नहीं नहीं मीठी थी, मिठास दिखाई तो नहीं पड़ा, पर देखा आपने। दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, तो आपको कोई चीज पसंद आई, आप कहते भाई ये जरा चीज दिखाना, आप इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये जो शेल्फ पर पड़ी है ना, सेकंड शेल्फ पर पड़ी है, जिस पर भी पड़ी थी, जरा दिखाना। तो आपने तो आप उसको दिखा रहे हो, उसको कहते मुझे दिखाना, आप कैसे देखते हो? आपने तो देख ली थी, अब आप देखना चाहते हो। आपने देख ली फिर देखना चाहते हो तो कैसे देखना चाहते हो, आप हाथ में लेते हो, अच्छा कपड़ा है मैं क्वालिटी कैसी है, कोई और चीज है कहाँ की बनी हुई है भाई, जो 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 चीज जिस तरह की मुझको चाहिए वैसी है, कंपनी कौन सी है, बनी कहाँ है, क्या मटेरियल यूज हुआ है। तो आपने आंख से तो देखा पर हाथ भी यूज कर रहे हैं, दिमाग भी यूज कर रहे हैं और एक्सपीरियंस भी यूज कर रहे हैं कि फलानी चीज मैंने जो पहले ली थी ना ये पतली बहुत थी, अभी ये क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी तो लिखी हुई नहीं है उस पर आपने क्योंकि वो एक्सपीरियंस पहले किया हुआ है, बराबर है ऐसे। तो जैसे आपने कोई चीज को खा के देखा, चख के देखा का खट्टी है या मीठी है, फूल को सूंघ के देखा खुशबूदार है या कैसी खुशबू है, सूंघ के भी नहीं देखा ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ रहा है ये गुलाब का सच्चा फूल है, दिखाई पड़ रहा है तो दिखाई तो रंग पड़ रहा है, टच किया अरे ये तो नहीं है, ये तो अरे ये तो कागज का फूल है, आंखें धोखा दे सकती हैं, पर अनुभव धोखा नहीं देता। कोई आपके पड़ोसी आसपास रहते हैं वो पूछते हैं भाई कैसे व्यक्ति हैं, भाई कहने मैंने मुझे मालूम नहीं है, मैंने कभी उनसे मिली नहीं हूं, और रोज तो देखते हैं उनको और कोई का उसके साथ लेन देन बोल चाल व्यवहार होता है कहते हैं अरे मैंने देखा है अच्छा व्यक्ति नहीं है, बाहर वाले से तो बहुत कपड़े अच्छे लगते हैं, मकान बहुत अच्छा लगता है, देखा है मैं जानती हूं, कैसे जाना, अनुभव से जाना ना। तो हमने जाना, हमने पहचाना, हमने पाया शिव भवला भगवान। तो शिव क्या है, शिव का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी। तो शिव परमात्मा का नाम है कि नहीं है, नाम है ना, तो नाम किसी चीज पर होगा ना, नाम है भाई, ये माइक है तो भाई आवाज इससे आ रही है इसलिए उसको माइक कहते हैं, टेलीफोन, टेलीविजन को टेलीफोन नहीं कहते, आवाज तो उसमें से भी आ रही है, टेलीफोन से भी टेलीविजन से भी आवाज आ रही है राइट, पर टेलीफोन जिसमें सुना और बोला, ग्राइंडर भाई ग्राइंड करती है कोई, दाल ग्राइंडर है, मिक्सी है, काम करते हैं ना। तो भगवान का नाम है कल्याण का काम करता है, इसलिए नाम शिव है, कल्याणकारी है। तो परमात्मा के परिचय में जो आठ बातें आज की मुरली में थी, वो पहली बात बाबा ने बताई, मेरे नाम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे याद करते हो तो भक्ति में तो शिव को याद किया, मूर्ति शंकर की रख दी, शंकर की मूर्ति मंदिर में रख के शिव जी को कह दिया। तो बाबा ने कहा शंकर मैं नहीं हूं, नाम पता चल गया। दूसरी बात रूप भी बताई, मेरा जिस्मानी रूप नहीं है, जैसे तेरा जिस्म में जो आत्मा है, स्टार है, ज्योति स्वरूप है, मैं भी ऐसे ही हूं। रूप का भी पता चला जिस्म वाला रूप नहीं है, नाम का भी पता चला कि कोई शरीर पर नाम नहीं है, पर किस बात पर नाम है, किस बात पर परमात्मा का नाम शिव है, खाली रूप पर नहीं है, कर्तव्य पर नाम है। रूप पर नाम नहीं है, कर्तव्य पर नाम है। तो जितने भी नाम हैं वो परमात्मा के कर्तव्य पर है, उसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्यात्मा के नाम काम पर नहीं है, मनुष्य के नाम चाम पर है, चमड़ी पर है, काम पर नहीं है। भगवान को शरीर की चमड़ी है ही नहीं अपनी, जिस्म वाला रूप नहीं है। तो अनेक नाम है, एक नाम नहीं है, है एक नाम, अनेक है। नहीं, भगवान है तो भगवान का मतलब भाग्य बनाने वाला है, भाग्यवान, भाग्य बनाता है, ईश्वर इच्छा पूरी करता है कि मैं भाग्य बनाता हूं, किस्मत बनाता हूं, बिगाड़ता नहीं हूं, भगवान हूं, भाग्य बनाता हूं, ईश्वर हूं, भक्ति मार्ग में भक्तों की इच्छा पूर्ण करता हूं। नाम बताया ना। तो जैसा जैसा परमात्मा का कर्तव्य है वैसे उसका नाम है। क्या भक्तों की इच्छा है ईश्वर के, क्या चाहते हैं वो, मुक्ति चाहते हैं, इसे मैं मुक्तेश्वर हूं। मैं कहता हूं मुझे याद करो, जिस्म को याद नहीं करो, निराकार को याद करो। क्यों याद करो, तब मैं काम करूंगा। निराकार को याद करो तो काम होएगा, जिस्मधारी को याद करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो याद किया तो पाप कट जाएंगे, तो पाप कटेश्वर हूं। इच्छा पूरी करता हूं भक्तों की इच्छा, ईश्वर हूं। तुम्हारा भाग्य बनाता इसलिए भगवान हूं। याद से पाप कटते इसलिए पाप कटेश्वर हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति देता इसलिए मुक्तेश्वर हूं। तो जितने भी नाम है, फिर मैं निराकार हूं, खुद आता हूं साकार में, जन्म नहीं लेता हूं, शिव हूं पर शंभु, स्वयं भू पर आता हूं। इसलिए शिव शंकर नहीं कहेंगे, पर शिव शंभु कहेंगे। स्वयं भू पर आता हूं, ब्रह्मातल में प्रवेश करता हूं। इसीलिए मुझे खुदा कहते हैं, खुद आता है तो खुदा है, खुद आता है। क्या करने आता है, पतितों को पावन बनाने आता है। कोई मनुष्य किसी को पावन नहीं बना सकता। सदगति दाता है, श्रीमत देने आता है। तो नाम, रूप, गुण, कौन सा गुण बताया पहले, पहला ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान देता हूं कल्याण के लिए, कल्याणकारी गुण नहीं, वो संस्कार है उसका, गुण ज्ञान का सागर है। शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। ये सागर नहीं अथा गुण लिमिटेड नहीं है, इसीलिए तू आत्मा परमात्मा नहीं है और मैं परमात्मा आत्मा नहीं हूं। किस बात का फर्क है, कौन सी दो बातों के कारण फर्क है तेरे और मेरे में, जबकि रूप एक जैसा है। क्या बताया, तुम जन्म मरण में आते हो। और कल क्या बताया था, आज का मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं आता हूं। तो कल का था मेरा, मेरी शिव जयंती मनाते हैं, क्योंकि जन्म लेना माना शरीर में आना, शरीर का आधार लेता हूं। तो तुमने शरीर का आधार लिए से तुम्हारा जन्म है, पर तेरा शरीर होने के कारण कर्म का हिसाब किताब हुआ, तेरा मरण होता है। तो जन्मता और मरता, मैं मरता नहीं, मैं अमरनाथ हूं। आत्मा अमर है तो भी कहेंगे जन्म मरण में आती है। मैं अमरनाथ हूं, जन्मता हूं, मेरी शिव जयंती होती है पर मृत्यु नहीं होती। तो नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य भी बताया, त्रिमूर्ति बताई ना, कल भी कहा था इसके बारे में। कल कौन सी बात बताई और आज फिर कौन सी बात बताई कर्तव्य में। उस दिन बताया था ना विचार सागर मंथन कैसे करना होता है, मंथन करने के लिए दही जमानी है ना, तो कल वाला जागरण लगाएंगे, कल वाला खट्टा लगाएंगे ना, दही लगाएंगे, परसों वाली लगाएंगे, तब तो वो जच जाएगी, अंदर बात जम जाएगी, तब तो मंथन करेंगे। तो मैं सत्य त्रिमूर्ति शिव हूं, खाली शिव नहीं हूं, सत्य सदा शिव हूं, बताया ना सदा शिव। बाकी राम सदा राम नहीं है, कृष्ण को सदा कृष्ण नहीं कहेंगे, नारायण को सदा सत्यनारायण कहेंगे पर सदा नारायण नहीं कहेंगे। तो पूरा नाम क्या हुआ, सत्य त्रिमूर्ति शिव है, सदा शिव, कर्तव्य सहित हो गया। फिर और कौन सी बात बताई, और कौन से अपने परिचय की बात बताई, नाम भी हो गया, रूप भी हो गया, गुण भी हो गया, कर्तव्य भी हो गया, और कौन सी बात बताई, धाम रहता कहां हूं, भूल गए, पता तो है पर आज की मुरली में मैं आज की मुरली रिवाइज करा रही हूं भाई, मैं कहां रहता हूं, मैं परमात्मा क्यों हूं, खाली आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। तेरे मेरे में फर्क है, क्या फर्क है, तू भी परम धाम में रहता है, मैं भी परम धाम में रहता हूं, परंतु तुम थोड़े वक्त रहते हो, मैं सदा वहां रहता हूं। तुम यहां आते हो शरीर धारण करके, शरीरधारी बन जाते हो, मैं शरीर में आके भी निराकार रहता हूं, अशरीर ही रहता हूं। तो मेरा धाम कौन सा है, परम धाम। तो नाम भी हुआ, रूप भी हो गया, गुण भी हुआ, कर्तव्य हुआ, और देश धाम, पांच बातें हो गई, नाम रूप गुण कर्तव्य देश। फिर छठी बात, कौन सी मिसाल देके छठी बात बताई, अच्छी तरह से वो मिसाल बताई। वो मिसाल बताई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। कब ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि कब होती है? कलयुग के अंत में। फिर सत धर्म की, सतयुग की स्थापना कब होती है? संगम पर आता हूँ तो कलयुग के मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, आने का समय बताया। नाम रूप गुण कर्तव्य देश काल आने का समय, मिलने का समय, कब मिलता हूँ, कब आता हूँ? सतयुग में नहीं आता हूँ, त्रेता में नहीं आता हूँ। द्वापर में आता है? द्वापर में कौन आता है? धर्म पिता आते हैं, परम पिता नहीं आता। तो आने का समय कौन सा हुआ? ना सतयुग में आता है, ना त्रेता में आता है, ना द्वापर में आता है, ना कलयुग में। पर कलयुग के अंत में अति धर्म गलाने के समय आता है। आने का समय बताया, युगे युगे नहीं आता हूँ। छठी बात हो गई, तो नाम रूप गुण कर्तव्य देश और मिलने का समय, इसको कहेंगे काल, मिस टाइम। भाई मिलने का आऊंगा, हाँ मिलूंगा, कब मिलूंगा? तो मिलने का टाइम भी बताया। कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ। युगे युगे है, जब बोलेंगे सत्य युग तो सत्य के साथ युग बोलेंगे, त्रेता द्वापर के साथ युग शब्द नहीं बोलते। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग, समझता है ना? सतयुग युग शब्द आया, त्रेता द्वापर युग शब्द नहीं बोलते। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग का ये चक्कर है, तो चक्कर का ज्ञान दिया, समय कब आता हूं समय की पहचान दी। अच्छा, तो नाम रूप गुण कर्तव्य देश काल, सातवीं बात कौन सी बताई? वो भी बहुत अच्छी तरह से समझा के बताई। आज की मुरली सुना रही हो? कौन सी बात बताई आज की मुरली में? फिर संबंध भी, बाप रूप से वर्षा मिलता है, टीचर रूप से सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान शिक्षा मिलती है, सतगुरु रूप में पावन बनाता हूँ, है संबंध की पहचान दी। तो न केवल बाप रूप में, वर्षे रूप में याद करो, वर्षा तो बाप से मिलना ही है, टीचर भी याद रहे, क्योंकि सृष्टि की आदि मध्यंत का ज्ञान दे के लायक बना रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा के देवता बना रहे हैं। मच्छरों की तरह ले जाने वाले घर कट्ठा, कोई इंसान नहीं ले जाएगा, मैं ले जाता हूँ, सदगुरु सदगति दाता हूँ। एक में तीनों को बाबा ने कहा ना याद करना, वहां तो बाप को अलग याद करना पड़ेगा, टीचर को अलग याद करना पड़ेगा, गुरु को अलग याद करना पड़ेगा, तो एक में तीन संबंध है। न केवल तीन संबंध है पर सर्व संबंध है, संबंध की पहचान दी। तो नाम रूप गुण कर्तव्य देश काल संबंध, आठवीं बात कौन सी बताई? संबंध में ये भी कहा, ऐसा प्यार से याद करो जैसे सजनी साजन को याद करती है। इतने प्यार से याद करो जैसे सजनी साजन को याद करती है। ये माधव भाई चला गया क्या यहाँ से सुनते सुनते? अच्छा तो कैसे याद करो? यानी लॉयल्टी फेथफुल होके याद करो। तो यहां बच्चे बाप को प्यार से भी याद करते हैं, सजनी रूप से भी याद करते हैं, सर्व संबंध की बात, फिर उसमें फिर हम विचार करेंगे तो संबंध याद से याद होगी, संबंध होता है तो याद सहज होती है, संबंध नहीं है तो याद स्वाभाविक नहीं होती। किस समय आता हूं? कलयुगी दुनिया में इस समय संगम पर ही आता हूं। प्राप्ति क्या है? फिर नष्ट है, क्या प्राप्त कराने आता हूं? वर्षा भी मिलता है, तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। सारे कल्प का मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुलता है। तो बाबा की जो भी प्रॉपर्टी है, घर के भी मालिक हम बनते हैं। क्या बनाने आता है हमको, क्या देता है? ब्रह्मांड का भी मालिक बना देता है, सृष्टि का भी मालिक बना देता है। मालिकपना मिलता है, स्वराज मिलता है। डबल ताज मिलता है। तो बाबा ने कहा परिचय ऐसे दो, फिर उसने ये तो आठों बातें परमात्मा के परिचय की है, परंतु उसमें और विस्तार भी है। यानी ये बात समझ में आ गई तो फौरन बुद्धि चलेगी। यानी हर कर्तव्य, जो भी बाबा का नाम है, वो कर्तव्य सहित है, गुण सहित है, गुण से, गुण के कारण नाम है, कर्तव्य के कारण नाम है। इंसानों का नाम और मनुष्यों के नाम और रूप से भगवान न्यारा है। बाबा ने कहा न्यारा नाम है, रूप वही है, नाम न्यारा है क्योंकि काम न्यारा है। मनुष्यों का काम नहीं है पर नाम है। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक लड़के का नाम था, गांव में रहता था, उसका नाम था छज्जू। छज्जू शहर में आया तो जो लड़के थे ना स्कूल के, हंसते थे उस पर, अरे छाज आ गया। तो उसको बेचारा मजाक करते थे और कंधे पर खिलाते थे, चलो अनाज साफ कर लो छज्जू आ गया, चावल साफ कर लो छज्जू आ गया। छाज होता है ना, छाज समझते क्या होता है ना, इससे अनाज साफ करते हैं, ऐसे उसको छाज बोलते। बेचारा बड़ा परेशान, कहा कि अभी माँ बाप ने यही नाम रख दिया है ना। तो थोड़ा सोचा कि चलो मैं नाम बदली करता हूं। तो सोचा, रास्ते से जा रहा था तो एक माता जी थी, बुजुर्ग थी, बुढ़ी थी, बड़ी साधारण गरीब जैसी, धान कूट रही थी। चावल होते हैं ना, मशीन नहीं होती थी उस वक्त, मशीन तो होती नहीं थी। उखली में, उखली बोलते थे, बड़ा सा पत्थर का बर्तन और बड़ा मूसल लेके। तो उसने कहा, माता जी आपका नाम क्या है? कहा, बेटा क्या करेगा पूछ के? कहा, नहीं माता जी बताओ। मेरा नाम लक्ष्मी है। बड़ा हैरान हो गया, अरे इसका नाम लक्ष्मी है? मैंने तो सुना था लक्ष्मी के पास बहुत धन होता है। ये धन होते इतनी गरीब है, धान कूट रही है, तो मेरे काम का तो नाम है नहीं ये। चलो आगे गया, एक बुढ़ा था बेचारा, नैनीन था, बुढ़ा था, दिखाई भी ज्यादा नहीं पड़ता था, भीख मांग रहा था, जॉब तो कोई था नहीं, बेचारे को मिलता नहीं था, तो भीख मांग रहा था। उसको उसने पैसा दिया, कहा पिताजी अंकल बताओ आपका नाम क्या है। कहा बेटा क्या करेगा पूछ के। कहा नहीं अंकल बताओ आपका नाम क्या है। कहा बेटा मेरा नाम धनपत राय है। धनपत राय है, धन का राजा है ये तो। कहा मेरे कब काम का नाम नहीं है ये। चलो आगे गया, थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक कोई 20-25 साल का लड़का था, छोटी उम्र का, शरीर छोड़ दिया था। कितने साल का होगा मालूम नहीं, कहा छोटी उम्र का था लड़का। कहा क्या कौन था। कहा फलाने का लड़का ने शरीर छूट गया, मर गया। अच्छा तो उसने सोचा ये इनका लड़का मर गया, मैं भी लड़का हूं, चलो तो इसका नाम जो है मैं वही नाम रख लूंगा अपना। कहा बताओ तो सही नाम क्या था इनके बेटे का। कहा जी नाम था अमरनाथ। उसने सोचा अमरनाथ नाम था, मर गया तो मन में सोचा लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ भी मर गया तो छज्जू नाम है ठीक। भाई जैसा नाम है काम ना हो तो नाम किस काम का। तो भगवान कहते हैं मेरा नाम तो काम का है, कल्याण करने का है। इतने सारे नाम जो हैं, अल्लाह है तो अल्लाह बनाता हूँ, राम है तो आराम देता हूँ, रहीम है तो रहम करता हूँ। एक एक नाम जो है ना, जितने भी सोमनाथ है तो सोम रस पिलाता हूँ, अमरनाथ है तो तेरे को अमर बनाता हूँ, अमर कथा सुनाता हूँ। एक एक जितने भी नाम है सब भगवान के गुण और कर्तव्य पर है। तो ऐसा बाबा भोला भी बहुत है पर साथ में भाला भी है, तो क्या बात बताई फिर। भोला है, माफ कर देता है, पर साफ साफ कर्मों का हिसाब किताब बताता है। धर्म क्या कर्तव्य कराता है, अधर्म क्या कर्तव्य कराता है, कौन से कर्म दुख देते हैं, कौन से कर्म सुख देते हैं। धर्मराज का मतलब जो साफ साफ फैसला करे, पार्शियलिटी नहीं हो, दोनों पड़े बराबर हो। तराजू इसलिए दिखाते हैं जो कर्म किया है उसका उतना ही रिजल्ट मिले। पाप कर्म है तो रिजल्ट दुख है, पुण्य कर्म है तो रिजल्ट सुख है। सच है तो साहब राजी है, झूठ है तो सजा है। तो कर्मों की फिलॉसफी क्या है, किसी का छिपा के भी कोई कर्म करे रिजल्ट छिप नहीं सकता। बीज को धरती में छिपा के डाल दो, बीज को धरती में छिपा के डाल दो, फल छिपेगा, फल नहीं छिपेगा, फल तो सबको बड़ा होके दिखाई पड़ेगा। तो कोई कितना भी पाप कर्म छिप के कर लेवे, स्वधर्म की शक्ति ये कहती है, सत्य ये कहता है कि जो कर्म है भले छिपा के करो, साकार से छिपा सकते हो, निराकार से नहीं छिपा सकते। वो धर्मराज का मतलब है कि सत्य की शक्ति, सत्य धर्म ही, धर्म और कर्म की फिलॉसफी बताने वाला। अपने को धोखा दे सकते हो, साकार से छिपा सकते हो, धर्मराज से नहीं छिपा सकते। तभी बाबा कहते हैं कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, यानी वो राइट काम करता है। जो ज्ञान है, कर्म योग है, कर्म फिलॉसफी है, वो किससे कोई उससे बच नहीं सकता, उसका रिजल्ट तो है ही है। फिर सच बताएंगे तो माफ हो जाएगा, पर कर्म का खाता साफ नहीं होएगा। समझ आई बात? सच बताएंगे तो तुम्हारे दिल में जो भारीपन था वो खत्म हो जाएगा, और कुछ जो है कुछ हिस्सा माफ हो जाएगा, पर साफ खाता अकाउंट खत्म करने के लिए, साफ करने के लिए योग बल चाहिए। इसलिए धर्म राज है, यानी धर्म जो है वो भेदभाव वाला नहीं होता, सच्चाई से काम होता है। तो बाबा फिर ये सारा बताया कि सच नहीं, सच भी नहीं छिप सकता तो झूठ भी नहीं छिप सकता, गुण भी नहीं छिप सकता तो अवगुण भी नहीं छिप सकता। भले छिपा ले भी, कोई समय आएगा फौरन उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। कर्म का खाता धर्मराज का हिसाब किताब है, कर्म फिलॉसफी। भले उसमें जो है इंस्टेंट कर्म हो, शॉर्ट टर्म कर्म हो या लॉन्ग टर्म कर्म हो, छिपेगा नहीं, इंस्टेंट में उसी वक्त फल मिलता है। जैसे खेती है, आपने खेत लगाया, फूल लगाए, सब्जियां लगाई, अनाज बोया और फल का पेड़ लगाया, एक ही वक्त लगाया, फल एक वक्त निकलेगा। फूल जो है उसको कुछ कितना समय लगेगा, बहुत साल लगेंगे क्या उगने में? फूल तो जल्दी उगाएंगे ना, फूल तो फौरन उग जाएंगे। सब्जी 3-4 महीना लेगी, अनाज 6 कुछ और ज्यादा वक्त लेगा, और पेड़ फलों का बीज कुछ साल लगाएगा। तो कर्म का खाता छिपा के भी रख लिया, पर आखिर जो बहुत समय का पाप कर्म फिर बहुत काल तक चुकाना पड़ता है, तो कोई फौरन फल देने वाला है कर्म, कोई थोड़ा देर से फल देने वाला है, कोई इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर के बाद, क्योंकि फल 6 साल 8 साल 10 साल के बाद निकलेगा, तो एक जन्म नहीं, पिछले जन्म तक, अगले जन्म तक चले फिर फल निकले। पर धर्म राज का काटा तभी, गर्भ जेल में भी सजा तो जीवन में भी सजा, गुप्त भी सजा तो प्रत्यक्ष भी सजा। तो इसीलिए बाबा ने बेशक परमात्मा को रहम दिल कहते हैं, भोला नाथ कहते हैं, पर भाला भी है, भाला तो चुभ जाता है, भला करने वाला भी है तो भाला भी है, सीधा भी। हिसाब किताब ठीक रखने का है। उसमें भी जितना जितना, कोई ऐसे नहीं अच्छा चुप कोई भोलेपन से भगवान के बन गए, नहीं, समझ से भगवान का बनना है और समझ से भगवान को बनाना है अपना संबंधी। ऐसे नहीं कि अच्छा बाबा हम तो आपके बन गए ना, बड़ा नशा है, मैं तो बन गया ना आपका, अभी आपका बन गया ना तो सब आप संभालो ना, समर्पण हो गए ना। परंतु किस संकल्प से समर्पण किया, किस भावना से समर्पण किया, क्या समर्पण किया? तो ये सब सब समझने की, बाबा ने कहा समझदार ही समझेंगे, ज्ञान को भी समझदार समझेंगे, और समझ के बाबा को अपना। फिर है बाबा का बनने का फल और बाबा का बन के फिर माया का बनने का रिजल्ट, ये भी तो बताया ना। तो मैं इतना समझदार बनाता हूं और कौन सा अवतार बन जाते हैं? भक्ति मार्ग में कह दिया भगवान कच्छ अवतार है, मच्छ अवतार है, परशुराम अवतार है, बहुत सारे अवतार बताए। बाबा कहता मैं तो वो सब नहीं बनता हूं। तो ये भी इस समय की स्टेज आत्मा की, जो अंदर की, बाबा ने कहा ये सब भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाए हैं ये विचित्र बातें हैं, पर गुह्य राज है। अब ये भी राज है, आता हूं अपने तन में नहीं आता हूं, साधारण तन में आता हूं, सन्यासी में नहीं आता हूं। क्यों नहीं आता सन्यासी में? सन्यासी तो पवित्र है ना, पवित्र बनाना नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं आता किसी सन्यासी में? क्या बताया? नाम या पतित पावन, और दूसरा देवी देवता राज्य स्थापन करना है। सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले गए, भगवान राजयोग सिखा के राजा ही देने के लिए आते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने आते हैं। पूजनीय को पुजारी, पुजारी जो पूजनीय थे पुजारी बन गए, उनको फिर पूज्य बनाना है। सन्यासी तो ब्रह्म को पूजते हैं, कोई चित्रों के पुजारी नहीं है। तो इसमें भी बहुत गहरा राज है, क्यों नहीं सन्यासी में आता हूं? भगवान को जानते ही नहीं है, ब्रह्म को भगवान समझते हैं। तो फिर एक एक ये जो आठवें बातें हैं, उस आठ बातों में भी अलग अलग परिचय में भी कैसे किसको समझाना है। आता हूं साधारण तन में आता हूं, इस तन में क्यों आता हूं? फिर जिस तन में आता हूं वो भगवान नहीं है, ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, विष्णु को भी भगवान नहीं कहेंगे, शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, भाग्य मैं बनाता हूं। ये भी पुरुषार्थ करके भाग्य बना रहे हैं, भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, पर मेरे द्वारा ही भाग्य प्राप्त होते हैं। वर्षा पिता प्रजापिता, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, महात्मा गांधी से वर्षा नहीं मिलता, पिता वो भी है राष्ट्रपिता, धर्मपिता से भी वर्षा नहीं मिलता, प्रजापिता है पर वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तो एक एक पॉइंट में, यानी कितनी अच्छी तरह से परमात्मा के परिचय को एक एक चीज खोल के, तो योग अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर बुद्धि एकाग्र जल्दी हो जाएगी ना, क्या किसी कोई पूछेगा जल्दी जवाब दे सकेंगे, क्लैरिफाई किया होगा, विचार किया हुआ होगा ना। बाप का बच्चा तो बन गए, चलो बच जाएंगे, बच्चा बन गए माना बच गए, परिस्थितियों से बच गए, परेशानियों से बच गए, चिंता से बच गए, मेरे को दे दो सब कुछ, समर्पण करो, निश्चय चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? निश्चय नहीं है, भगवान है या निश्चय नहीं है, इसलिए या तो अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेते हैं या पाप कर्म करके छिपा लेते हैं, दूसरों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। मोह ममता वही भूल किया तो छिपा लेते हैं। तो पहचान भी चाहिए, फिर पहचान के साथ ये भगवान निश्चय चाहिए निराकार में। वो स्वयं सामने मेरे पढ़ा रहा है, बता रहा है, बना रहा है मुझे। परंतु हम बार बार जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण बन के भी फिर कभी कौन सा अवतार बन जाते हैं? क्या अवतार बताया अब आपने? कोई कोई पक्के ब्राह्मण भी कौन सा अवतार बन जाते हैं? पता चला कौन सा अवतार बोलते हैं आपको? हम कौन सा अवतार? अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, बाबा मनुष्य देवता बना रहे हैं, एकदम शक्ति अवतार बोलते हैं, शिव शक्ति अवतार बोलते हैं, पर कौन सा अवतार बन जाते हैं? है किसको याद? मूर्खता का अवतार। सुना था? तो समझ पीछे, तो हमने उस पर सोचा कि जो भक्ति मार्ग में निशानियां है ना, भगवान कहता है मैं तो कछुआ मछली नहीं बनता हूं, पर हमारे अंदर वो संस्कारों को उतारते हैं। अभी हम ब्राह्मण बनते हैं तो कर्म इंद्रियों को समेटते हैं ना, 84 जन्म 84 लाख तो नहीं है, 24 अवतार कहते, 84 लाख जो अवतार नहीं कहते, जन्म कहते। पर ये 24 प्रकार के भिन्न भिन्न स्टेजेस से जो हम पास करते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो संगम पर हम ही कछुए की तरह, योगी वो जो कछुए की तरह कर्म इंद्रियों को समेटना सीख जावे, ज्ञान इंद्रियों को समेट लेवे। ये ऑर्गन्स है ना, आंखें कितनी दूर जल्दी फौरन दूर चली जाती हैं, कान 5 साल 15 साल 20 साल पहले वाली जगह पर चले जाते हैं, वो शब्द गूंजते रहते हैं। और कछुआ क्या करता है? हाथ पैर को समेट लेते हैं अंदर। तो अभी बाबा हमको कहते हैं कछुए की तरह संस्कारों को उतारो अपने में, मूर्खता का अवतार नहीं बने, शक्ति अवतार, शिव शक्ति अवतार। तो शिव की शक्तियां कौन सी हैं? ब्राह्मणों की शक्तियां कौन सी हैं? देवताओं की शक्तियां कौन सी हैं? वो अपने अंदर उतारनी है। तो कछुआ क्या करता है? अंग समेट लेता है। तो हमको भी ये जो मन इतना इतना फालतू इधर उधर दौड़ता रहता है, मन मना भव अंतर्मुखी बन जाओ, मन बाबा के साथ बात करने में बिजी कर दो, मन को मंथन, ज्ञान में मंथन करो, अंतर्मुखी। कछुआ मतलब अंतर्मुखी बन जाना, कर्म इंद्रियां अंतर समेट लेना। जरूरत है तो तब तो शब्द बोलो, नहीं है एकदम इतना शक्तिशाली जो आपकी स्किन पर पत्थर या पहाड़ भी आ जावे ना, कमर नहीं टूटती, आयु लंबी हो जाती है, ब्राह्मण आयु बड़ी आनंद मौज वाली होगी। कछुए का अवतार मछली जल बिना नहीं रह सकती, तो गंगा भी बन जाओ और मछली भी बन जाओ। ए गंगा कहां से उतरी? शिव जी की जटाओं से उतरी। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया ना, वो ज्ञान जीवन में उतारेंगे तो ज्ञान गंगा बन जाएंगे ना। मछली पानी बगैर रह नहीं सकती, तो ज्ञान रस में डूबे रहो। जितना ज्ञान रस में डूबेंगे और पानी बढ़ता जाएगा, मछली बड़ी होती जाएगी, बढ़ता जाएगा मछली बड़ी होती जाएगी। बाबा सुविधाएं साधन सेवा बहुत देता जाएगा। पर छोटा था, बड़ा होता गया होता गया। तो सतयुग त्रेता में तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम दिव्य गुण संपन्न है, निर्विकारी हैं, दैवी शक्तियां काम कर रही हैं। खान पान शुद्ध है, भोजन एकदम पवित्र है, तभी तो फिर हमारे मूर्तियों के सामने भोग लगा के पवित्र बना के खाते हैं। फिर द्वापर में क्या बन गए? वरा। वरा क्या होता है पता? कौन होता है वरा? गंध खाता है, गंध में ही रहता है बहुत। पता है क्या है? इसको किसी को उसका बच्चा बोलो ना तो गाली लगती है। वरा माना सुअर। गंध खाने वाले, गंध में रहने वाले, खाए इतने स्वच्छ देवी देवता। तो जितना सत्व प्रधान है, सत्व है, रजो है, तमो है, बनते जाते हैं। भगवान ये नहीं बनता। मूर्खता का अवतार बनेंगे तो ये सब बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर ज्ञान और योग की शक्ति ऐसी रखो जो बाबा से मिला हुआ है ना। एकदम बिंदु अवतार, वामन अवतार, ब्राह्मण अवतार, वामन अवतार। ब्राह्मण निरहंकारी गुप्त, इनकोग्निटो पुरुषार्थधारी। तो तीन लोक को मालिक बन जावे, तीन पैर पृथ्वी में, पृथ्वी मापी ना, तो तीन पैर पृथ्वी में तीन लोक के मालिक बन गए, यानी पुरुषार्थ तीन कदम में। तो बिंदु रूप बन के रहेंगे तो सिंधु बन जाएंगे। इतना छोटा, छोटे बन के रहेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, अहंकारी नहीं। तो बाबा ने कहा ये सब चित्र भी बहुत गहराई वाले, जो भी बाबा सुना रहे हैं ये भी समझने वाला समझे, विचार करने वाला मक्खन खावे। विचार ही नहीं किया मक्खन कैसे खाएंगे, तंदुरुस्त कैसे रहेगा, खुश कैसे रहेगा, डबल लाइट कैसे रहेगा, खुशी में कैसे रहेगा, शक्तिशाली कैसे बन के रहेगा। तो हर चीज जो बाबा सुनाते हैं उस पर थोड़ा अच्छी तरह से। तो अब क्या है कि आज की मुरली, कल की मुरली, परसों की मुरली, वो बहुत सारे रत्न इकट्ठे हो जाएंगे तो गहना बन जाएगा ना, श्रृंगार हो जाएगा ना, स्वरूप बन जाएंगे, लक्ष्मी बन जाएंगे। अधिकार रखेंगे उन गुणों को, व्यवहार में लाएंगे, नारायण बन जाएंगे। करनी करे नारायण बन जावे। फिर कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। संगम पर फिर जो है इतना बाबा से प्यार, अपना बाबा को बना दिया। अजवाने का बच्चा बनाएंगे तो बाकी तेरे बच्चों की पालना बाबा करवाएगा, जिम्मेवारी अपनी पर पहले जिम्मेवारी ले लेना। तो एक एक बात मुरली की अच्छी तरह से विचार करें, उसका कनेक्शन जोड़े, तो सारा दिन वही मंथन चलता रहेगा ना। कमजोर दिल नहीं बनना है, मैच्योर बनना है। कमजोर दिल टूटता है जल्दी जल्दी, तो बाबा ने कहा हृदय मन को कमजोर बनाने वाला क्या होगा, माया अच्छा तरह से पछाड़ेगी। शक्तिशाली मन भावनाएं, पर कोई परिस्थिति आई समझदारी से मैच्योरिटी से पास करना है। तो एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से विचार करें, फिर बाबा से रूरियान करें। तो रू को राहत मिलेगी, खुशी भी मिलेगी, डबल लाइट बन जाएंगे, शक्ति भी भर जाएगी। लक्ष्मी को हथियार कोई है क्या हाथ में? चलो सरस्वती गुण ग्रहण करती गई सितार बजाती गई, माया सुपर फिर माया सामने आई तो शक्ति बन गई, कमल फूल समान रहे, कोई हथियार नहीं है, बड़े आराम से लक्ष्मी बनना। दिवाली का समय है, हर एक को लक्ष्मियों की मूर्ति बनना है। कितनी सारी देवियां देखो ना, कितनी बहने हैं। तो आपको तो आपका तो शहर का नाम कंट्री का नाम ही है माई मार, मार माया को माया मार, समझा? क्या हो आप, कहाँ से आए हो? माया मार से आए हो, समझा? माया को मार के जा रहे हो, शिव शक्ति लक्ष्मी बन के जा रहे हो माई मार से। पहले पुराना नाम है? हाँ। अभी तो कहाँ से आए हो माया को मारने के लिए शिव शक्ति बन के जाना, तो मैं आप लोगों से ही मिलने के लिए आई। मैंने शीलू बहन को कहा मैं एक बारी क्लास कराने जाऊंगी, सब बहनों को मिलूंगी। बहुत अच्छा, ये शिव शक्तियां हैं, भाइयों वाला काम करती हैं, बिल्डिंग खुद बनाई है, रेत भी खुद तैयार किया खेत में से, उसमें से समुद्र नदी में से, सीमेंट भी खुद बनाती हैं, ईंटें भी खुद बनाई हैं, मिस्त्री का काम भी करती है, लोहार का काम भी करती हैं, कुम्हार का काम भी करती हैं। मैं होके आई हूँ, है ना? देखा, कोई कोई बहनें अभी पीछे, बहुत सारी बहनें पीछे आई हैं। जब हम गए थे तो कौन कौन सी बहनें थी उस समय जब हम थे? अच्छा मैं बहुत सारी थी, कंबोडिया वाले कमजोर नहीं पावरफुल चलो ओके थैंक यू ओम शांति।